डैनियल की पुस्तक संख्या 145, बाइबिलीय भविष्यवाणियों और वर्तमान घटनाओं की व्याख्या, आधुनिक राजनीति और धार्मिक प्रतीकवाद पर एक परिप्रेक्ष्य,
वोकवाद का धर्म सदोम और साम्यवाद की राजनीति। मिस्र तब उदित हुए जब सबसे धनी राष्ट्रपति ने 2015 में राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव लड़ने के अपने इरादे की घोषणा की और अपनी राजनीतिक गवाही देने के बाद 2020 में उसका वध कर दिया गया। असंतरण 98 में 3 और आधे भविष्यवाणीगत दिनों तक अपनी शैतानी गवाही देने के पश्चात पोप का भविष्यवाणीगत अर्थ में वध किया गया। तथापि परमेश्वर का भविष्यवाणीगत वचन ये प्रतिपादित करता है कि तोप अजगर के साथ अपने युद्ध में विजयी तरक होता है।
हे मनुष्य के संतान, अपना मुख मिस्र के राजा फिरौन की ओर कर और उसके विरुद्ध तथा सारे मिस्र के विरुद्ध भविष्यद्वाणी कर, बोल और कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, देख हे मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, उस बड़े अजगर के विरुद्ध जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है, जिसने कहा है, मेरी नदी मेरी अपनी है और मैंने ही उसे अपने लिए बनाया है। यहेजकेल 29:10।
मिस्र महान अजगर है और फिरौन की नास्तिकता फ्रांसीसी क्रांति की नास्तिकता तथा 21वीं सदी के वैश्विकतावाद का प्रतीक थी। 21वीं सदी के पृथ्वी पशु की सीमाओं के भीतर वो वैश्विकतावाद डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। येजकेल बताता है कि परमेश्वर मिस्र के विरुद्ध है और अध्याय में आगे येजकेल ये भी बताता है कि परमेश्वर मिस्र को उत्तर के राजा को दे देगा, जिसे उस खंड में नबुकदनेस्सर के रूप में पहचाना गया है और जो अंतिम दिनों के नकली उत्तर के राजा का प्रतिनिधित्व करता है। नकली उत्तर का राजा पोप की सत्ता है और परमेश्वर येजकेल के माध्यम से ये घोषित करता है कि नबुकदनेस्सर ने उसकी ताड़ना की छड़ी के रूप में जो सेवा की, उसके बदले वो मिस्र को उत्तर के राजा को दे देगा। वो ये भी बताता है कि जब अंतिम वर्षा आएगी, उस काल में वो मिस्र को पोप को दे देगा।
और ऐसा हुआ कि 27वें वर्ष पहले महीने में, महीने के पहले दिन, यहोवा का वचन मुझ पर उतरा कि हे मनुष्य के संतान, बाबुल के राजा नबुकदनेस्सर ने सोर के विरुद्ध अपनी सेना से बड़ी सेवा करवाई। हर एक का सिर घिस घिस कर गंजा हो गया और हर एक का कंधा छिल गया। तो भी उसे और उसकी सेना को सोर के विरुद्ध की गई उस सेवा का कोई प्रतिफल न मिला। इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है, देखो मैं मिस्र का देश बाबुल के राजा नबुकदनेस्सर को दे दूंगा। वह उसके लोगों को ले लेगा, उसकी लूट ले लेगा और उसका शिकार उठा लेगा, और ये उसकी सेना की मजदूरी ठहरेगा, क्योंकि उसने जो परिश्रम उसके विरुद्ध किया, उसके बदले मैंने उसे मिस्र का देश दे दिया है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए काम किया है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है। उसी दिन मैं इसराइल के घराने का सींग उगाऊंगा और मैं उनके बीच तेरे मुँह को खोल दूंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यहेजकेल 29:17-21।
वह दिन जब परमेश्वर इसराइल के घराने का सींग अंकुरित कराता है, 11 सितंबर 2001 है, जब अंतिम वर्षा का छिड़काव आरंभ ही हुआ। उसी समय प्रभु ने पहरेदारों को उठाया ये कहते हुए, नरसिंगे की ध्वनि पर ध्यान दो, तीसरी हाय के नरसिंगे की, क्योंकि उसने ये संकेत किया कि परमेश्वर उनके बीच तुझे मुख खोलने का अवसर देगा। बीच उस समयावधि की पहचान करता है जो 11 सितंबर 2001 को आरंभ हुए अंतिम वर्षा के छिड़काव और उसके रविवार के विधान पर समापन के बीच है, जब पवित्र आत्मा अपरिमित रीति से उंडेला जाएगा। उन दो मार्ग चिन्हों के मध्य बीच दो गवाह अथवा दो सींग अपनी गवाही देते रहे, जब तक कि 2020 में दोनों सड़क पर मार डाले नहीं गए। वध से पूर्व उन्होंने अपना साक्ष्य दिया और वध हो जाने के पश्चात वे आठवें के रूप में, अर्थात जो सात में से है, पुनर्जीवित किए गए। उनका वध नास्तिकता मिस्र और अनैतिकता सदोम की अजगर शक्ति से किया गया। परमेश्वर के लिए जो सेवा उन्होंने की थी, उसके प्रतिफल स्वरूप उन्हें मिस्र देने की उसने प्रतिज्ञा की। जब उत्तर का राजा दानियल 11 के 41वें पद में संयुक्त राज्य के महिमामय देश पर अधिकार कर लेता है, तब वो मिस्र पर अधिकार कर लेता है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रबंधकारी कार्यवाही में की गई सेवाओं का उसका पारिश्रमिक है।
हाय अश्शूर, वो मेरे क्रोध का डंडा है और उसके हाथ में जो लाठी है वो मेरे प्रकोप की है। मैं उसे कपटी जाति के विरुद्ध भेजूंगा और अपने क्रोध के लोगों के विरुद्ध उसे आज्ञा दूंगा कि वो लूट ले और शिकार पकड़ ले और उन्हें सड़कों की कीचड़ की तरह रौन डाले। यशाया 10:5-6।
अश्शूरी उत्तर का राजा जन है जो पोपाई सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। वही अंतिम दिनों में उत्तर का नकली राजा है। अश्शूर और बाबुल का उपयोग इसराइल पर न्याय लाने के लिए किया गया, उसके उत्तरी और दक्षिणी दोनों राज्यों पर, उसके निरंतर विद्रोह के कारण।
इस प्रकार इसराइल अपने ही देश से निकालकर अश्शूर में ले जाया गया, क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर प्रभु की वाणी नहीं मानी परंतु उसकी वाचा का उल्लंघन किया और प्रभु के दास मूसा ने जो कुछ आज्ञा दी थी उसकी सब बातों की अवहेलना की। दो राजा 17:7-11, 14:17-22, 17:22 करो, 18:17-17-22 करो। तेज बाय इसराइल अपने देश से निकालकर अश्शूर। 10 गोत्रों पर आए भयानक न्याय में प्रभु का एक बुद्धिमान और दयालु उद्देश्य था, जो वो अपने पितरों की हनमय भूमि में उनके द्वारा अब और नहीं कर सकता था। उसे वो उन्हें अन्य जातियों के बीच बिखेर कर पूरा करना चाहता था। मानव जाति के उद्धारकर्ता के द्वारा प्रदान की गई क्षमा को ग्रहण करने का चुनाव करने वाले सब लोगों के उद्धार के लिए उसकी योजना अभी भी पूरी होनी थी, और इसराइल पर आई पीड़ाओं में वो अपनी महिमा को पृथ्वी के राष्ट्रों पर प्रकट करने के लिए मार्ग तैयार कर रहा था। जो बंदी बनाकर ले जाए गए थे वे सब पश्चाताप खीन नहीं थे। उनमें कुछ ऐसे थे जो परमेश्वर के प्रति सच्चे बने रहे और अन्य ऐसे जिन्होंने उसके सामने अपने को नम्र किया था। इन्हीं के द्वारा जीवित परमेश्वर के पुत्र होशे 1:10 वो अश्शूर के राज्य में असंख्य लोगों को अपने चरित्र के गुणों और अपनी व्यवस्था की हितकारिता का ज्ञान कराएगा। भविष्यद्वक्ता और राजा 2:92।
प्रभु ने उत्तरी राजाओं को अपने न्याय के साधन के रूप में उपयोग किया, और बाइबल में वर्णित वो सिद्धांत जिसे उन्होंने उन उत्तरी राजाओं के संबंध में अपनाया ये था कि प्रदान की गई सेवाओं का उन्हें प्रतिफल मिलना चाहिए।
और उसी घर में ठहरो, जो कुछ वे तुम्हें खाने पीने को दें वही खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर से घर मत जाना। लूका 10:7।
प्रभु शीघ्र आने वाले रविवार कानू पर, जब वे अपने परीक्षण काल का प्याला भर देते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका को दंडित करने के लिए पापाइयत का उपयोग करते हैं, और प्रदत्त सेवाओं के प्रतिदान स्वरूप वो मिस्र को पापाइयत को सौंप देता है। परमेश्वर का भविष्यवाणी वचन स्पष्ट करता है कि मिस्र पापाइयत को दिया जाता है, और दानियल के 11वें अध्याय के 42वें और 30वें पद इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। प्रदत्त सेवाओं के प्रतिदान के रूप में पोप वो शीर्ष बन जाता है जिसे वे 10 राजा ऊंचा उठाते हैं और जो पशु की विश्वव्यापी प्रतिमा पर शासन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पशु की प्रतिमा के समय में ट्रंप अजगर की शक्तियों पर विजय पाता है, क्योंकि वो 8वां सिर है, अर्थात जो 7 में से है। डेमोक्रेटिक पार्टी का पतन वो अजगर शक्ति जिसने 2020 में ट्रंप का वध किया था अब घटित हो रहा है। परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता। डेमोक्रेटिक पार्टी का ऊंट की कमर तोड़ने वाला आखिरी तिनका इस्लाम का झूठा भविष्यद्वक्ता है। 7 अक्टूबर 2023 के आक्रमण ने उसके समर्थन आधार के भीतर एक फाग डाल दी, जिसका कारण केवल इस्लाम की उस भूमिका को ठहराया जा सकता है जो जातियों को क्रोधित करती और क्लेश में डालती है। इसके साथ आगे और आक्रमण होंगे जो और भी बड़े विभाजन उत्पन्न करेंगे, जबकि पृथ्वी से निकलने वाले पशु के नागरिकों के एक वर्ग को एकजुट करेंगे जो अजगर की शक्तियों द्वारा छोड़ी गई अवैध आप्रवासन की बाढ़ की मूर्खता को पहचानते हैं। ये एक आर्थिक संकट भी उत्पन्न करेगा, यद्यपि वो संकट पहले उपस्थित है।
और तब महान धोखेबाज मनुष्यों को ये मना लेगा कि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वही इन बुराइयों का कारण है। वो वर्ग जिसने स्वर्ग के रोष को उकसाया है अपने सब कष्टों का दोष उन पर मढ़ देगा जिनकी परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता उल्लंघनकर्ताओं के लिए निरंतर एक फटकार है। ये घोषित किया जाएगा कि लोग रविवार के विश्राम दिन का उल्लंघन करके परमेश्वर को रुष्ट कर रहे हैं कि इस पाप ने ऐसी विपत्तियां लाई हैं जो तब तक नहीं थमेंगी जब तक रविवार का पालन कठोरता से लागू न कर दिया जाए, और कि जो चौथी आज्ञा के दावे प्रस्तुत करते हैं इस प्रकार रविवार के प्रति श्रद्धा को नष्ट करते हुए वे लोगों के उपद्रवी हैं जो उनके ईश्वरीय अनुग्रह हैं और सांसारिक समृद्धि में पुनर्स्थापन को रोक रहे हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दास के विरुद्ध प्राचीन काल में लगाया गया आरोप समान रूप से भली भांति स्थापित आधारों पर फिर दोहराया जाएगा। और हुआ कि जब अहाब ने एलिया को देखा, तब अहाब ने उससे कहा, क्या तू ही है जो इसराइल को क्लेश में डालता है? उसने उत्तर दिया, मैंने इसराइल को क्लेश में नहीं डाला, परंतु तू और तेरे पिता का घराना, क्योंकि तुमने प्रभु की आज्ञाओं को त्याग दिया है और तू बालों के पीछे चला है। एक राजा 18:17-18। जब लोगों का क्रोध झूठे आरोपों से भड़काया जाएगा, तब वे परमेश्वर के दूतों के प्रति बहुत हद तक वही मार्ग अपनाएंगे जो धर्मत्यागी इसराइल ने एलिया के प्रति अपनाया था। महान संघर्ष 590।
सप्त का पालन करने वालों को ईश्वरीय अनुग्रह और सांसारिक समृद्धि के हट जाने का कारण ठहराया जाने वाला है। हमारे ठीक आगे आने वाले इस काल का वर्णन करते हुए वो एलिया और उसका अहाब के साथ ठकराव का उल्लेख करती है। उनके परस्पर आरोप प्रत्यारोप कर्मेल पर्वत के सामने हुए। निकट आने वाले रविवार के कानून से पहले बढ़ते हुए न्यायिक दंडों के द्वारा सांसारिक समृद्धि और ईश्वरीय अनुग्रह हटा लिए जाते हैं। अभी उद्धृत अंश रविवार के कानून के परीक्षण काल के दौरान होने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला का उल्लेख करता है, परंतु दो परीक्षण काल हैं, जो पशु की प्रतिमा का परीक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमाओं के भीतर होता है, वो बाद में पूरे संसार में दोहराया जाता है। इस अंश में वर्णित सभी घटनाएं भविष्य सूचक रूप से अपनी पूर्ति पाती है। एक तो निकट आने वाले रविवार के कानून तक पहुंचाने वाले इतिहास में और उसके बाद आने वाले विश्वव्यापी रविवार के कानून के संकट के इतिहास में। टेस्टिमोनीज के 9वें खंड का पहला अनुच्छेद, जो पृष्ठ 11 पर आरंभ होता है और इस प्रकार 9/11 को चिह्नित करता है, ये कहता है, हम अंत के समय में जी रहे हैं। समय के जो चिन्ह तीव्र गति से पूरे हो रहे हैं वे ये घोषित करते हैं कि मसीह का आगमन निकट ही है। जिन दिनों में हम जी रहे हैं वे गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर की आत्मा धीरे धीरे परंतु निसंदेह पृथ्वी से हटाई जा रही है। परमेश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार करने वालों पर महामारियां और न्याय पहले ही आ पड़ रहे हैं। स्थल और समुद्र की विपत्तियां, समाज की अस्थिर स्थिति, युद्ध की चेतावनियां अशुभ सूचक हैं। वे महानतम महत्व की समीपवर्ती घटनाओं का पूर्वाभास कराते हैं। जैसे जैसे ये वृत्तांत आगे बढ़ता है, हम पृष्ठ 14 पर पाते हैं, शिक्षकों और राजपुरुषों के मध्य भी ऐसे बहुत नहीं हैं जो समाज की वर्तमान अवस्था के मूलभूत कारणों को समझते हो। जो शासन की बागडोर थामे हुए हैं वे नैतिक भ्रष्टाचार, गरीबी, दरिद्रता और बढ़ते अपराध की समस्या का समाधान करने में समर्थ नहीं है। वे व्यावसायिक क्रियाकलापों को अधिक सुरक्षित आधार पर स्थापित करने के लिए निष्फल संघर्ष कर रहे हैं। यदि मनुष्य परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं पर अधिक ध्यान दे तो वे उन समस्याओं का समाधान पा ले जो उन्हें उलझाती है।
पवित्र शास्त्र मसीह के दूसरे आगमन से ठीक पहले संसार की दशा का वर्णन करते हैं। जो लोग लूट और उगाही से अपार धन बटोर रहे हैं उनके बारे में लिखा है, तुमने अंतिम दिनों के लिए धन इकट्ठा किया है, देखो तुम्हारे खेत काटने वाले मजदूरों की मजदूरी जिसे तुमने छल से रोक रखा है पुकार रही है, और फसल काटने वालों की पुकार सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर ऐश विलास में रहे हो और विलासी बने रहे हो, तुमने अपने हृदयों को वध के दिन के लिए मोटा किया है, तुमने धर्मी को दोषी ठहराया और मार डाला और वो तुम्हारा विरोध नहीं करता। याकूब 5:3-6।
अंतिम दिनों में लोग व्यवसाय संचालन को अधिक सुरक्षित आधार पर स्थापित करने के लिए व्यर्थ ही जूझ रहे हैं। डेमोक्रेट्स, उनकी प्रचार मशीन और वैश्विकतावादी बैंकर व्यर्थ ही संघर्ष कर रहे हैं, और वे उस वास्तविक वित्तीय स्थिरता के बारे में झूठ बोल रहे हैं जिसके बारे में उनका दावा है कि बाइडेन प्रशासन ने इसे हासिल किया है। मसीह के दूसरे आगमन से ठीक पहले की दुनिया के प्रतीकों में से एक है वे लोग जो डकैती और जबरन वसूली द्वारा अपार धन इकट्ठा कर चुके हैं। जेम्स की पुस्तक से जिन पदों का हवाला सिस्टर व्हाइट ने दिया था उनसे पहले के तीन पद ये है।
अब सुनो, हे धनवानों, तुम पर आने वाली विपत्तियों के कारण रो और विलाप करो। तुम्हारा धन सड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़ों ने खा लिया है। तुम्हारे सोने और चांदी पर जंग लग गई है और वो जंग तुम्हारे विरुद्ध गवाही देगी और आग के समान तुम्हारी देह को खा जाएगी। तुमने अंतिम दिनों के लिए धन का ढेर लगा रखा है। याकूब 5:1-3।
अंतिम दिनों का एक भयान विषय सूचक लक्षण ये है कि ऐसे पुरुष होंगे जो अपनी आश्चर्यजनक धन संपत्ति से पहचाने जाते हैं जो धोखाधड़ी द्वारा उपार्जित की गई थी। ऐसे लोग प्रतिदिन समाचारों में रहते हैं। वो समय आ चुका है। उसी समय उन विश्व के बैंकरों और अरबपतियों की संपत्ति को सोने और चांदी के रूप में निरूपित किया गया है जो जंग खा जाते हैं। चांदी और सोना जंग नहीं खाते, इसलिए शास्त्र अंतिम दिनों में धनी मनुष्यों की संपत्ति के साथ घटित होने वाली एक सर्वथा अप्रत्याशित बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि उनका सोना और उनकी चांदी जंग खा जाएंगे। उस आर्थिक पतन का अग्रसूचक 11 सितंबर 2001 को तीसरी हाय के आगमन के साथ घटित हुआ। तीसरी हाय का इस्लाम बाइबलीय भविष्यवाणी की पूर्वी पवन है और अंतिम दिनों में वही पूर्वी पवन अर्थव्यवस्था को डुबो देती है जैसा कि तर्शीश के जहाजों द्वारा निरूपित है।
क्योंकि देखो, राजा इकट्ठे हुए, वे साथ साथ आगे बढ़े। उन्होंने उसे देखा तो वे अचंभित हुए, वे घबरा गए और शीघ्र भाग गए। वहां भय ने उन्हें जकड़ लिया और प्रसववती स्त्री जैसी पीड़ा। तू पूर्वी पवन से तर्शीश के जहाजों को तोड़ देता है। भजन संहिता 48:4-7।
वैश्विकतावादी राजा, अरबपति और बैंकर भय और पीड़ा से व्याकुल हैं जब पूर्वी पवन, जो जातियों के बढ़ते क्रोध का जैसे प्रसव वेदना में स्त्री प्रतीक है, तीसरे हाय के इस्लाम द्वारा उत्पन्न होकर तर्शीश के जहाजों को डुबो देती है। इस्लाम स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था को तोड़ देने ही वाला है और ऐसा आर्थिक व राजनीतिक परिवेश उत्पन्न करेगा जो डेमोक्रेटों और वैश्विकतावादियों का नहीं बल्कि ट्रंप की शक्तियों के पक्ष में पूर्णतः कार्य करेगा। क्योंकि अजगर की सामर्थ्य 8वें सिर को, जो 7 में से है, सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप दे दी गई है। परमेश्वर ने ट्रंप का उपयोग यूनानियों के समूचे राज्य क्षेत्र को उद्वेलित करने के लिए किया, क्योंकि अब परमेश्वर वे परिस्थितियां उपस्थित कर रहा है जिनमें समस्त संसार दो वर्गों में विभाजित किया जाना है। वो आर्थिक व्यवस्था जिसे आज वैश्विकतावादी संचालित करते हैं, पहली बार वुड्रो विल्सन के राष्ट्रपति कार्यकाल में लागू की गई थी। विल्सन एक डेमोक्रेट थे जिन्हें इस वादे पर चुना गया था कि वे संयुक्त राज्य को आसन्न प्रथम विश्व युद्ध से बाहर रखेंगे, परंतु अंततः वही राष्ट्रपति बने जिनके कार्यकाल में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। विल्सन राष्ट्र संघ को आगे बढ़ाने के लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र का पूर्ववर्ती था। उनके राष्ट्रपति काल में संयुक्त राज्य की वित्तीय संरचना वैश्विकतावादियों के हाथों में दे दी गई जब विल्सन ने 1913 में राष्ट्र की आर्थिक दिशा को फेडरल रिजर्व सिस्टम के अधीन कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के राष्ट्रपति की एक भविष्यवाणात्मक विशेषता उसका युद्ध में न जाने का वादा था जो झूठ था। वो लीग ऑफ नेशंस की एक विश्व सरकार को बढ़ावा देने वाला प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व था और उसके नेतृत्व में संयुक्त राज्य की वित्तीय व्यवस्था विश्व बैंकरों के हवाले कर दी गई। वो 2013 से 2021 तक राष्ट्रपति रहा। 2019 में एडवेंटवाद की तीसरी पीढ़ी, जिसका प्रतीक दुनिया से समझौता करना है, विल्सन के दुनिया से समझौते के समानांतर चली, क्योंकि दोनों सींग एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। लाओदिकियाई एडवेंटवाद की तीसरी पीढ़ी में उन्होंने अपने चिकित्सा और शैक्षिक तंत्रों का नियंत्रण अपनी आध्यात्मिक संप्रभुता के बाहर के लोगों के हाथों में सौंप दिया। इसी समय विल्सन ने संयुक्त राज्य की वित्तीय संप्रभुता वैश्वादी बैंकरों को सौंप दी और उसने अथक रूप से काम किया पर असफल रहा। संयुक्त राज्य की राजनीतिक संप्रभुता को वैश्वादियों को सौंपने में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रपति रहे विल्सन उन भविष्य सूचक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो तीसरे विश्व युद्ध की पहचान कराती हैं। वे ऐसे इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें फेडरल रिजर्व वैश्विक अर्थव्यवस्था को उस दिशा में नियंत्रित करने में शामिल है जो अमेरिका की संप्रभुता के लिए नहीं बल्कि वैश्वीकरणवादी एजेंडा के लिए सबसे उपयुक्त है। वे ऐसे राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो तब पद पर है जब नई विश्व व्यवस्था अंततः बाइबल की भविष्यवाणी का सातवां राज्य बनकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेती है, यद्यपि उनका शासन अल्पकालिक होता है। ये तथ्य दो साक्षियों पर स्थापित है क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस में शामिल होने का विल्सन का विफल प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद संयुक्त राज्य का संयुक्त राष्ट्र में शामिल होना का पूर्व रूप था। इन दो साक्षियों के आधार पर शीघ्र आने वाला रविवार का कानून जो अपने साथ राष्ट्रीय विनाश लेकर आता है संयुक्त राष्ट्र को उस एक विश्व सरकार के रूप में स्थापित करने की ओर ले जाता है जिसके लिए वैश्वीकरणवादी वुड्रो विल्सन के राष्ट्रपति कार्यकाल से ही प्रयासरत रहे हैं। ये भविष्य सूचक विशेषताएं उस आठवें और अंतिम राष्ट्रपति के राष्ट्रपतित्व में मौजूद होनी चाहिए जो सात में से एक है। विल्सन के बाद रिपब्लिकन वॉरेन हार्डिंग आए जिन्होंने रोरिंग ट्वेंटीज कहलाने वाले दौर की शुरुआत की जिससे 1939 का क्रैश हुआ, जिससे महामंदी आई, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ट्रंप का पहला राष्ट्रपतित्व रोरिंग ट्वेंटीज था और बाइडेन पृथ्वी के पशु के इतिहास की सबसे बड़ी मंदी की शुरुआत करने वाले हैं। उस मंदी का उदाहरण 1939 का क्रैश था, लेकिन एलान व्हाइट के समय का पैनिक ऑफ 1875 भी उसका उदाहरण था। संयुक्त राज्य में 1830 के दशक की मंदी को आमतौर पर पैनिक ऑफ 1837 कहा जाता है। ये 1837 से 1840 के दशक के मध्य तक चली एक गंभीर आर्थिक मंदी थी जो 1830 के दशक के अधिकांश हिस्से को समेटती थी। पैनिक ऑफ 1837 की विशेषताएं थीं वित्तीय संकट, बैंकों का विफल होना, व्यापक बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाइयों की एक लंबी अवधि। 1837 की आर्थिक घबराहट एक सट्टात्मक बुलबुले के कारण शुरू हुई। 1938 का पतन भी इसी वजह से हुआ था। 1837 में जब बुलबुला फूटा तो व्यापक दिवालियापन और वित्तीय नुकसान हुए। सट्टात्मक बुलबुले के बाद एक के बाद एक बैंक विफल हुए जिससे बैंकिंग प्रणाली पर से विश्वास उठ गया और व्यापक वित्तीय घबराहट फैल गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट और अमेरिकी निर्यात की मांग में कमी से और गहरी हुई वैश्विक आर्थिक मंदी ने संयुक्त राज्य में आर्थिक परेशानियों में योगदान दिया। 1929 की गिरावट जिसने महामंदी की शुरुआत को चिन्हित किया से पहले शेयर बाजार में सट्टेबाजी का एक बुलबुला बना हुआ था। 1926 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक समृद्धि का एक दौर था जिसे रोरिंग ट्वेंटीज कहा जाता है और जो तेज औद्योगिक वृद्धि, तकनीकी नवाचार और व्यापक आशावाद से चिह्नित था। इसी अवधि में सुलभ ऋण, मार्जिन ट्रेडिंग, उधार पैसे से शेयर खरीदना और कंपनियों के आंतरिक मूल्य के बजाय भविष्य में कीमतों के बढ़ने की अपेक्षा के आधार पर शेयरों की सट्टात्मक खरीद से प्रेरित होकर शेयर बाजार में सट्टेबाजी उफान पर पहुंच गई। शेयर कीमतें ऐसे स्तरों तक बढ़ गईं जिन्हें बनाए रखना संभव नहीं था और वे उन कंपनियों के आंतरिक मूल्य से बहुत आगे निकल गईं जिनका वे प्रतिनिधित्व करती थीं। मार्च 2000 से अक्टूबर 2002 के बीच .com बुलबुला फूटा। 11 सितंबर 2001 की घटना उसी आर्थिक गिरावट के बीच हुई। फिर 2008 में हाउसिंग बुलबुला फूटा जिसे वैश्विक वित्तीय संकट या ग्रेट रिसेशन कहा गया। रविवार के कानून की ओर बढ़ते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों की सांसारिक समृद्धि छीन ली जाती है। सांसारिक समृद्धि का हटाया जाना 1,44,000 की मुहरबंदी के समय में होता है। मुहरबंदी के समय का पहला साभी मील का पत्थर एक आर्थिक पतन से जुड़ा हुआ था। 11 सितंबर 2001 तीसरे स्वर्गदूत का सशक्तिकरण था और जब वही स्वर्गदूत 1844 में आया तो वो इतिहास भी एक आर्थिक पतन में निहित था। 1844 शीघ्र आने वाले रविवार के कानून का प्रतिरूप है और 11 सितंबर 2001 मोहरबंदी की अवधि की शुरुआत है। यीशु हमेशा किसी बात के अंत को उसकी शुरुआत से दिखाते हैं। 1939 का पतन द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हुआ और उसी की ओर ले गया। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
हम लोगों में एक समुदाय के रूप में शिथिल उपेक्षा और अपराध समान अविश्वास रहा है, जिसने हमें उस कार्य को करने से रोके रखा है जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है कि हम अपना प्रकाश अन्य राष्ट्रों के लोगों पर चमकने दें। इस महान कार्य में आगे बढ़ने और जोखिम उठाने का भय है, ये सोचकर कि साधनों का व्यय प्रतिफल नहीं लाएगा। यदि साधनों का उपयोग किया भी जाए और फिर भी हम ये न देख सकें कि उससे आत्माएं उद्धार पाई हैं, तो क्या? यदि हमारे साधनों का कुछ भाग पूर्ण हानि में चला जाए तो क्या? कुछ भी न करने से ये अच्छा है कि काम करें और काम करते रहें। तुम नहीं जानते कि कौन सफल होगा, ये या वो। लोग पेटेंट अधिकारों में निवेश करते हैं और भारी हानियां उठाते हैं और इसे सामान्य बात मान लेते हैं, परंतु परमेश्वर के कार्य और उद्देश्य में लोग कदम बढ़ाने से डरते हैं। जब धन आत्माओं के उद्धार के कार्य में लगाया जाता है और उससे तुरंत प्रतिफल नहीं मिलता, तो उन्हें वो धन पूर्ण हानि सा लगता है। वही साधन जो अभी परमेश्वर के कार्य में इतनी किफ़ायत से लगाए जाते हैं और जिन्हें स्वार्थवश रोके रखा जाता है, थोड़े ही समय में सब मूर्तियों के साथ छछुंदरों और चमगादड़ों के पास फेंक दिए जाएंगे। जब अनंत काल के दृश्यों की वास्तविकता मनुष्य की इंद्रियों पर खुल जाएगी, तब धन का मूल्य जल्द ही बहुत अचानक घट जाएगा। द ट्रू मिशनरी, 1 जनवरी 1874।